नमस्कार। आज का हमारा विषय भगवद गीता में मूर्ति पूजा के बारे में है। कई बार ये कहा जाता है कि भगवद गीता में मूर्ति पूजा नहीं है या फिर मूर्तियों की पूजा की बात नहीं है, इसीलिए हम लोग मूर्ति की पूजा जो कर रहे होते हैं वो गलत है, मूर्ति पूजन नहीं होना चाहिए। ऐसा पूरी तरह से सच नहीं है। पूरी तरह सच इसलिए नहीं है क्योंकि भगवद गीता में मूर्ति पूजा का सीधे सीधे नहीं, दूसरे तरीके से जिक्र आता है। दूसरी तरह से इसकी चर्चा इसलिए होती है क्योंकि भगवद गीता में सिर्फ और सिर्फ 700 श्लोक ही हैं। अब अगर 700 श्लोक हैं तो आपको कई बार ऐसे शब्द इस्तेमाल करने पड़ते हैं जिनका अर्थ व्यापक होता है। इन व्यापक अर्थ वाले शब्दों का फायदा ये होता है कि आप एक ही शब्द इस्तेमाल करके पूरा वाक्य कह डालते हैं। जैसे अगर हम लोग हिंदी में दवानल कहते हैं, जिसे जंगल में लगी आग जो कि बहुत तेजी से फैल रही हो, ऐसी आग से हमारा तात्पर्य होता है। अंग्रेजी में हम अगर यही बात कहना चाहें तो हम लोग कहेंगे द न्यूज़ स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। अब द न्यूज़ स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर कहने के बदले अगर हम लोग सिर्फ एक शब्द इस्तेमाल करें, द न्यूज़ प्रोलिफरेटेड, तो सिर्फ एक शब्द प्रोलिफरेटेड का अर्थ होता है जंगल की आग की तरह फैलना। यानी सिर्फ एक शब्द से हमारा करीब करीब पूरे वाक्य का काम चल गया। ऐसा ही भगवद गीता में होता है। कई बार एक शब्द ऐसा होता है जिसके कई कई अर्थ निकलते हैं या वृहत अर्थ होते हैं, उससे पूरे पूरे वाक्य का बोध हो जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम लोग 17वें अध्याय का 14वां श्लोक देखें तो वहाँ कहा गया है, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनं शौचम आर्तवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरं तप उच्यते। इस श्लोक का मोटे तौर पर अर्थ होता है, देवता, ब्राह्मण, गुरुजन और जीवन मुक्त महापुरुष का पूजन करना, शुद्धि रखना, सरलता, ब्रह्मचर्य का पालन करना और हिंसा न करना, ये सभी शरीर संबंधी तप कहे गए हैं। इसको अब हम लोग थोड़े से विस्तार से देखते हैं। यहाँ पहला ही शब्द देव आता है। देव मुख्य रूप से पांच ईश्वर कोटि के देवताओं के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये पांच ईश्वर कोटि के देवता कौन है? तो सबसे पहले होते हैं भगवान विष्णु, दूसरे भगवान शंकर, तीसरे श्री गणेश, चौथे में शक्ति और पांचवें में सूर्य। अब अगर साधारण तरीके से देखें तो भगवान विष्णु की शालिग्राम मूर्ति की उपासना की जाती है, शंकर के लिए शिवलिंग की स्थापना आप करते हैं, गणेश जी की पूजा कैसे होती है वो आपने देख रखा है, काफी विशालकाय मूर्तियां स्थापित होती हैं। शक्ति यानी देवी दुर्गा की मूर्तियां भी कैसे स्थापित होती हैं और कैसे उनका पूजन होता है, ये आप देख चुके हैं। और अंतिम सूर्य, तो वो भी प्रत्यक्ष होते हैं और सूर्य के कोणार्क मंदिर या फिर जो आपने शायद हैदर नाम की फिल्म में देख रखा होगा, उस फिल्म में एक शैतानी नृत्य करता हुआ नायक दिखाई देता है जो कि शायद आधा खलनायक है। वो जिस मंदिर में नाच रहा होता है वो मार्तंड सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। काफ़ी साल पहले कश्मीर में स्थित इस मंदिर को इस्लामिक हमले में पूरी तरह तोड़ दिया गया था। ये मंदिर इतना विशालकाय था कि इसे तोड़ने में 2.5 वर्ष से ऊपर का समय लगा था और अभी भी ये मंदिर पूरी तरह टूटा हुआ नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भगवान सूर्य की भी कितने बड़े मंदिरों की स्थापना होने की परंपरा रही है। अगर दूसरे श्लोक देखें तो 17वें अध्याय के 14वें श्लोक के साथ ही 9वें अध्याय का 26वां श्लोक भी आप देख सकते हैं। इस श्लोक में कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा प्रेम पूर्वक पत्र, पुष्प, फूल, फल, जल इत्यादि मुझे अर्पित करते हैं, उसे दिए हुए उपहार को मैं खा लेता हूँ। यहाँ विशेष तौर पर खा लेता हूँ कहा गया है। और दूसरी चीज़ आप गौर करेंगे कि अगर कोई यज्ञ हो रहा हो तो जाहिर सी बात है वहाँ पे आग जल रही होगी और उसमें आप जल तो नहीं डाल रहे होंगे। यानी ये विशेष तौर पर मूर्तियों की पूजा करने की ही बात की जा रही है। ऐसा ही 9वें अध्याय के 14वें श्लोक भी कहा जाता है, जहाँ भगवान कह रहे होते हैं कि भक्त लोग भक्तिपूर्वक मुझे नमस्कार करते हुए मेरी उपासना करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कई बार भगवद गीता में सीधे तौर पर नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर मूर्ति पूजा की बात हो रही है। मूर्ति पूजा भगवद गीता में नहीं आती, या भगवद गीता कोई बहुत ही सेक्युलर सा ग्रंथ है जिसमें पूजा पाठ के विषय में कुछ नहीं कहा गया है, ये धार्मिक नहीं केवल आध्यात्मिक किताब है, ऐसा कहना बहुत ज़्यादा उचित नहीं होता। ये जितनी आध्यात्मिक है उतनी ही धार्मिक किताब भी है। अब अगर मूर्ति पूजा को हम लोग थोड़े वृहत रूप में देखें तो आप पाएंगे कि गुरुओं की पूजा करने की बात अगर आती है तो गुरु मुख्य रूप से आपके लिए मनुष्य ही हो सकते हैं, तो उनकी उपासना भी मूर्ति पूजा के अंतर्गत आ जाती है। ऐसे ही आप प्रकृति के बहुत से गुणों की जब पूजा कर रहे होते हैं तो वो भी मूर्ति पूजा के अंतर्गत आ जाएगी, क्योंकि नर्मदा गंगा जैसी कई नदियों की पूजा करने की परंपरा रही है, या फिर कैलाश जैसे पर्वतों की पूजा होती है। इसके अलावा पेड़ जैसे कि पीपल, वटवृक्ष या तुलसी, इनकी पूजा की भी परंपरा रही है। तो ये सब के सब मूर्ति पूजा के अंतर्गत आ जाते हैं। 17वें अध्याय का ये 14वां श्लोक दूसरे कई मतों से भगवत गीता को अलग भी कर देता है। जैसे कि यहाँ पर ब्रह्मचर्य की बात होती है, ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो कई दूसरे छोटे मोटे मजहबों में आता ही नहीं। इसके अलावा यहाँ अहिंसा की बात होती है, ये अहिंसा भी ज़्यादातर मजहबों में मौजूद ही नहीं होती। इसका उदाहरण आप ऐसे भी देख सकते हैं कि एक चिकित्सक के बारे में, एक डॉक्टर या सर्जन के बारे में सोचिए। कई बार जब वो कोई शल्य क्रिया कर रहा होता है या कोई सर्जरी कर रहा होता है तो वो किसी न किसी शरीर के अंग को काट रहा होता है, लेकिन ये क्या हिंसा है? नहीं, ये हिंसा नहीं होगी, क्योंकि उसके मन में किसी प्राणी को कष्ट पहुंचाने का भाव नहीं था। जब तक किसी प्राणी को कष्ट पहुंचाने का भाव आपके मन में नहीं होता, तब तक उसे हिंसा नहीं कहा जा सकता। ये सिद्धांत दूसरे कई धर्मों में मौजूद नहीं होते, इसलिए इन्हें समझने में एक बार थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है, मगर उम्मीद है कि आप कोशिश करेंगे 17वें अध्याय का ये 14वां श्लोक और इसके अलावा 9वें अध्याय के 26वें और 14वें श्लोक को स्वयं पढ़कर उनका अर्थ देखने की कोशिश करेंगे, ऐसी मेरी आशा है। तो फिलहाल के लिए चर्चा को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।